एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों को छू चुकी है और शायद जीवन देखने का नजरिया भी बदल सकती है।
मेरा मतलब है रैंडी पॉश की द लास्ट लेक्चर, यानी अंतिम व्याख्यान।
बिल्कुल।
और देखिए, ये नाम सुनकर शायद लगे कि ये कोई उदास या भारी भरकम किताब होगी, है ना, लेकिन असल में ये उसके बिल्कुल उलट है।
हाँ, सही कहा।
ये सिर्फ मौत के साए में लिखी नहीं गई, बल्कि ये पूरी शिद्दत, जुनून और क्या कहते हैं, खुशी के साथ जीने की एक जबरदस्त वकालत है।
हाँ, और आज के समय में जहाँ हम सब अपनी अपनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, मतलब इसकी बातें शायद और भी ज्यादा मायने रखती हैं।
बिल्कुल।
ये हमें याद दिलाती है कि हमारे सपनों में, हमारे नजरिए में, हमारे रिश्तों में कितनी ताकत छिपी है। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल खड़ा करती है, अगर सचमुच दुनिया को या अपने सबसे प्रिय लोगों को कुछ बताने का आखिरी मौका मिले तो वो क्या होगा? कौन सी सीख होगी जो हम पीछे छोड़ जाना चाहेंगे?
और इसी सवाल ने रैंडी पॉश को वो मशहूर व्याख्यान देने के लिए प्रेरित किया। और देखिए, रैंडी पॉश कोई आम वक्ता या दार्शनिक नहीं थे।
हाँ,
वे अमेरिका की एक बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, कार्नेगी मिलन, वहाँ कंप्यूटर साइंस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन और डिजाइन के प्रोफेसर थे।
प्रोफेसर तो थे ही, लेकिन वर्चुअल रियलिटी मतलब आभासी वास्तविकता के क्षेत्र में उनका काम काफी अग्रणी माना जाता था, बहुत आगे का काम था।
हाँ, और उन्होंने एलिस नाम का एक सॉफ्टवेयर भी बनाने में मदद की थी।
अच्छा, एलिस?
जी, जिसका मकसद था युवाओं को, मतलब बच्चों को, आसान और मजेदार तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाना।
अच्छा, सुना है कि वो बहुत ऊर्जावान, बहुत क्रिएटिव थे और उनका पढ़ाने का अंदाज भी कुछ हटके था।
बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी कहानी को जो चीज असाधारण बनाती है, जो दिल को छू लेती है, वो उनका निजी अनुभव है। सोचिए, अगस्त 2006 में जब वे सिर्फ 46 साल के थे,
सिर्फ 46,
अपने करियर के शिखर पर, तीन छोटे बच्चों के पिता, उन्हें पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है और वो भी लाइलाज। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं।
सोचिए, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जीवन के आखिरी पड़ाव पर पीछे मुड़कर देख रहा हो। ये एक युवा प्रोफेसर, एक पति, एक पिता था जिसे अचानक अपनी मौत की सच्चाई का सामना करना पड़ा, है ना?
बिल्कुल। और इसी असाधारण परिस्थिति ने उन्हें वो अंतिम व्याख्यान देने की प्रेरणा दी। इसलिए उनकी बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है,
वो जी हुए बातें।
हाँ, वे उस अनुभव से निकली हैं जब आप जानते हैं कि आपका समय सीमित है। ये जीने के वो सिद्धांत हैं जिन्हें वे सचमुच जी रहे थे, जैसा आपने कहा।
वो ये किताब द लास्ट लेक्चर उसी भाषण पर आधारित है जो उन्होंने सितंबर 2007 में कार्नेगी मेलन में दिया था।
जी,
वहाँ एक लेक्चर सीरीज होती थी, नाम था जर्नीज। उसमें प्रोफेसरों से कहा जाता था कि वे कल्पना करें कि अगर ये उनका आखिरी भाषण हो तो वे क्या कहेंगे, क्या विरासत छोड़ेंगे।
अच्छा।
लेकिन रैंडी के लिए ये कल्पना नहीं थी, ये हकीकत थी।
और जहां तक मुझे समझ आया, उन्होंने ये भाषण मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए तैयार किया था, डायलन, लोगन और क्लो। वो इतने छोटे थे कि शायद,
हाँ शायद बड़े होकर उन्हें याद भी ना रहता कि उनके पिता कैसे थे।
बिल्कुल।
तो इस किताब के जरिए वे अपने मूल्य, अपनी सीख, अपनी पहचान, एक पिता के रूप में वे कौन थे, ये सब उनके लिए छोड़ जाना चाहते थे। एक तरह से, जैसे आपने पहले कहा था, उनके बच्चों के नाम में खत।
हाँ, एक खत जो बोतल में बंद करके भविष्य के लिए समुद्र में छोड़ दिया गया हो। बहुत खूबसूरत बात है ये।
और यही ईमानदारी शायद दुनिया भर के लोगों को भी छू गई।
हाँ बिल्कुल। किताब कैंसर या मौत के बारे में बहुत कम बात करती है, असल में ये जीवन का एक उत्सव है।
हाँ,
इसकी पूरी कहानी रैंडी के बचपन के सपनों के इर्द गिर्द बुनी गई है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे।
हाँ, कौन से सपने?
उनके सपने थे शून्य गुरुत्वाकर्षण में तैरना।
अच्छा।
नेशनल फुटबॉल लीग NFL में खेलना। स्टार ट्रैक के कैप्टन कर्क की तरह बनना।
वाह।
मेले में वो बड़े वाले स्टफ्ड खिलौने जीतना।
हाँ।
और डिज्नी के लिए काम करना, यानी एक इमेजिनियर बनना।
इमेजिनियर। और कमाल की बात यह है कि हर एक सपना किसी न किसी गहरी सीख से जुड़ा है ना?
बिल्कुल। चाहे वो दृढ़ता हो, रचनात्मकता हो, विनम्रता हो, या फिर वो बुनियादी चीजों पर ध्यान देने का महत्व।
और ये सिर्फ अपने सपनों के बारे में नहीं है, किताब का एक बड़ा हिस्सा इस बारे में भी है कि दूसरों को उनके सपने पूरे करने में कैसे मदद की जाए।
हाँ, और उसमें रैंडी को ज्यादा खुशी मिलती थी।
सही, किताब छोटे छोटे किस्सों जैसे अध्यायों में बंटी है तो पढ़ने में भी आसान लगती है।
जी हाँ, बहुत आसानी से पढ़ी जाती है।
तो चलिए किताब की कुछ खास बातों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत होती है उस मुश्किल फैसले से, क्या ये आखिरी भाषण देना भी चाहिए।
हाँ।
उनकी पत्नी जेय नहीं चाहती थी कि वे अपना बचा खुचा कीमती वक्त इस पर लगाएं। जाहिर है वो चाहती थी कि रैंडी परिवार के साथ रहें। ये एक बहुत ही मानवीय दुविधा है ना?
बिल्कुल है। एक तरफ परिवार के साथ बिताने के लिए घटता हुआ समय, दूसरी तरफ अपने बच्चों के लिए कुछ स्थायी छोड़ने की इच्छा, कुछ ऐसा जो उन्हें तब रास्ता दिखाए जब वे खुद वहां ना हो।
तो रैंडी ने दूसरा रास्ता चुना।
हाँ, लेकिन इस शर्त पर कि भाषण मौत के मातम के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी जीने की कला के बारे में होगा। और यहीं पर वे अपना वो मशहूर आइडिया लाते हैं, हेड फेक।
हेड फेक, ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब सा है।
हाँ हाँ हाँ, ये उनका एक खास शब्द है। उनका कहना था कि ये भाषण और ये किताब ऊपर से देखने में तो बचपन के सपनों को हासिल करने के बारे में लगते हैं।
हाँ।
लेकिन असल में ये उस बारे में है ही नहीं। असली मुद्दा है जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए।
अच्छा,
सपने हासिल करना तो बस एक बहाना है, एक हेड फेक है जिसके जरिए वे जीवन के असली सबक सिखाना चाहते थे। जैसे मान लीजिए खेल हमें टीम वर्क सिखाते हैं, जबकि हम सोच रहे होते हैं कि हम सिर्फ खेल रहे हैं।
अच्छा समझी, मतलब असली सीख पर्दे के पीछे छिपी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर उनके वो बचपन के सपने और उनसे जुड़ी सीखें क्या थीं? बताइए जरा।
हाँ, ये किताब का सबसे मजेदार हिस्सा है सच में। पहला सपना था शून्य गुरुत्वाकर्षण में तैरना।
हाँ।
रैंडी को विज्ञान में बहुत रुचि थी और उन्हें ये अनुभव करने का जुनून था। जब वे प्रोफेसर बने तो पता चला कि नासा का एक खास विमान है जिसे मजाक में वॉमिट कॉमेट कहते थे, जो ये अनुभव कराता था।
वॉमिट कॉमेट?
हाँ, मगर उसमें नियम था कि छात्र जा सकते थे, प्रोफेसर नहीं।
तो फिर क्या हुआ, क्या वे हार मान गए?
नहीं, यही तो रैंडी की खासियत दिखती है। उन्होंने नियम देखा कि भाई पत्रकारों को जाने की इजाजत है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को अपनी छात्र टीम का होम टाउन जर्नलिस्ट बता दिया।
अरे वाह।
और नियम के दायरे में रहते हुए अपना रास्ता बना लिया। यहां से उन्होंने सीखा हमेशा एक साइड डोर होता है, मतलब एक वैकल्पिक रास्ता।
साइड डोर?
हाँ, अगर सामने का दरवाजा बंद दिखे तो थोड़ा हटकर देखो, कोई खिड़की या पिछला दरवाजा जरूर मिलेगा। हार मानने की जरूरत नहीं, थोड़ा क्रिएटिव बनो।
वाह, मतलब नियमों को तोड़ना नहीं बल्कि उनके भीतर ही समाधान खोजना। कमाल है। अच्छा, अगला सपना था NFL में खेलना।
हाँ।
क्या वे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे?
नहीं, वे खुद मानते हैं कि वे बहुत प्रतिभाशाली एथलीट नहीं थे, पर उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। महारत हासिल करना कितना जरूरी है, चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों ना लगे।
हाँ, ये तो है।
और ये कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। रैंडी कभी प्रोफेशनल फुटबॉल तो नहीं खेले, लेकिन वे कहते हैं कि कोच ग्रहम से सीखी बातें, अनुशासन, दृढ़ता, आलोचना को स्वीकार करना, ये उनके जीवन के सबसे कीमती सबक थे।
अच्छा,
यहीं से उनकी वो मशहूर कहावत निकली, अनुभव वो है जो आपको तब मिलता है जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते थे।
वाह।
और अक्सर यही अनुभव सबसे मूल्यवान होता है।
ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब असफलता भी एक तरह का अनुभव है, एक सीख है। अच्छा, तीसरा सपना था कैप्टन कर्क बनना। ये कैसे पूरा हुआ? क्या वो एक्टर बन गए थे?
नहीं नहीं वे बचपन में स्टार ट्रेक सीरीज के कैप्टन कर्क के बड़े फैन थे।
हाँ।
सालों बाद जब रैंडी वर्चुअल रियलिटी के जाने माने विशेषज्ञ बन गए, तो कैप्टन कर्क का किरदार निभाने वाले असली एक्टर विलियम शैटनर, वो किसी रिसर्च के सिलसिले में उनकी लैब में आए।
सच में?
हाँ, सोचिए, रैंडी अपने बचपन के हीरो से मिले, लेकिन एक फैन की तरह नहीं मिले।
अच्छा,
बल्कि अपने क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के तौर पर, बराबरी के स्तर पर। यहां सीख थी विनम्रता, तैयारी और अपने आदर्शों को भी इंसान के रूप में देखने और उनसे सीखने का मौका।
कमाल है। और वो मेले वाले खिलौनों का क्या? बड़े स्टफ्ड खिलौने जीतना, ये कैसा सपना हुआ भला?
हाँ हाँ, ये थोड़ा मजेदार है। उन्हें मेले में वो जो बड़े बड़े इनाम वाले खिलौने होते हैं ना, उन्हें जीतने का जुनून था, और उन्होंने इसे भी पूरी गंभीरता से लिया, तरकीबें सीखी, अभ्यास किया और खूब जीते भी।
अच्छा।
बाद में जब वे अपनी पत्नी जेई के साथ डिज्नी वर्ल्ड गए, तो उन्होंने मिलकर अपनी भतीजी और भतीजे के लिए एक बहुत बड़ा खिलौना जीतकर उन्हें सरप्राइज कर दिया।
अरे वाह।
यहाँ से सबक मिलता है कि देखो, दृढ़ता और लगन से आप कुछ भी सीख सकते हो, और अपनी काबिलियत से दूसरों को खुशी देने का मजा ही कुछ और है।
बिल्कुल। और आखिरी, उनका सबसे बड़ा सपना डिज्नी इमेजिनियर बनना। ये क्या होता है इमेजिनियर?
इमेजिनियर वो लोग होते हैं जो डिज्नी के थीम पार्क के राइड्स जो आकर्षण होते हैं ना, वो डिजाइन करते हैं।
अच्छा।
ये रैंडी का बचपन का सबसे बड़ा सपना था। पीएचडी करने के बाद उन्होंने डिज्नी में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें सीधे सीधे मना कर दिया गया, रिजेक्ट हो गए।
ओह।
ये उनके लिए एक बहुत बड़ी ईंट की दीवार थी, जैसा कि वे कहते हैं।
ईंट की दीवार मतलब एक बड़ी बाधा, रुकावट।
हाँ, और ये किताब का एक और सेंट्रल आइडिया है। रैंडी कहते हैं कि ईंट की दीवारें हमें रोकने के लिए नहीं होती,
तो फिर
वे इसलिए होती हैं ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम उस चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हैं, कितनी बुरी तरह चाहते हैं।
अच्छा।
वे उन लोगों को रोकने के लिए होती हैं जो उसे उतनी शिद्दत से नहीं चाहते। रैंडी रुके नहीं। सालों बाद जब वे वीआर के एक्सपर्ट बन गए, तो उन्होंने डिज्नी के साथ एक साझा प्रोजेक्ट का रास्ता खोजा।
हाँ।
और आखिरकार कुछ समय के लिए एक इमेजिनियर के तौर पर काम करने का अपना सपना पूरा किया। तो ईंट की दीवारें असल में मौके हैं अपनी इच्छा शक्ति साबित करने के।
ये नजरिया तो बाधाओं को देखने का तरीका ही बदल देता है। कमाल है। सपनों के अलावा रैंडी ने और किन बातों पर जोर दिया? उन्हें ये सब सबक कहाँ से मिले थे?
उन्होंने अपने माता पिता के प्रभाव का बहुत जिक्र किया है। उनके पिता, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, उन्होंने उन्हें विनम्रता और दूसरों की सेवा करना सिखाया। उनकी माँ, जो अंग्रेजी की टीचर थीं, ने उन्हें कड़ी मेहनत और आलोचना को सही ढंग से लेना सिखाया। एक बहुत प्यारा किस्सा है कि जब रैंडी छोटे थे और अपना कमरा पेंट करना चाहते थे,
हाँ,
तो उनके माता पिता ने उन्हें पूरी आज़ादी दी कि वे दीवालों पर जो चाहे बनाए, चाहे वो गणित के फॉर्मूले हों या लिफ्ट का दरवाज़ा।
अरे वाह, आजकल के माँ बाप तो शायद सोच भी नहीं सकते। इसका क्या मतलब था उनके लिए?
रैंडी कहते हैं कि इससे उन्होंने सीखा कि बच्चों को प्रयोग करने, गलतियां करने और अपने जुनून को खोजने की आज़ादी देना कितना ज़रूरी है, चाहे थोड़ी गंदगी क्यों ना फैले। ये उन्हें सशक्त बनाने का एक तरीका है।
सही बात है। और मेंटर्स यानी गुरुओं के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा?
हाँ बिल्कुल। वे ब्राउन यूनिवर्सिटी के अपने प्रोफेसर एंडी वैन डैम का जिक्र करते हैं, जो बहुत सख्त थे और सीधी, कभी कभी कड़वी लगने वाली आलोचना करते थे।
अच्छा।
रैंडी मानते हैं कि यही कठोर प्रेम, यही सख्ती उनके विकास के लिए जरूरी थी। उनका कहना था कि जो लोग आपको ज्यादा पुश करते हैं, ज्यादा चुनौती देते हैं, वे असल में आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।
ये बात तो सोचने वाली है।
हाँ, इसलिए ईमानदार फीडबैक, चाहे वो सुनना मुश्किल ही क्यों न लगे, बहुत कीमती होता है, उसे संजोना चाहिए।
ये तो हुई अपने विकास की बात, लेकिन किताब का एक हिस्सा दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करने पर भी है ना?
हाँ, और रैंडी मानते थे कि इसमें उन्हें अपने सपने पूरे करने से भी ज्यादा संतोष मिलता था, खुशी मिलती थी।
अच्छा।
एक शिक्षक और मेंटर के तौर पर ये उनकी भूमिका का केंद्र था। उन्होंने कार्नेगी मेलन में बिल्डिंग वर्चुअल वर्ल्ड्स नाम का एक बहुत ही अनोखा और मशहूर कोर्स शुरू किया था।
उसमें क्या खास था? ऐसा क्या था उसमें?
उसमें वे अलग अलग तरह के हुनर वाले छात्रों को, जैसे आर्टिस्ट्स, प्रोग्रामर्स, डिजाइनर्स, म्यूजिशियंस, इनको एक साथ लाते थे।
अच्छा, मिक्स्ड ग्रुप।
हाँ बिल्कुल। और उन्हें बहुत कम समय में, टाइट डेडलाइन में, मिलकर जटिल वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट बनाने होते थे।
भापरे,
ऐसे रचनात्मक ढंग से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
मतलब ये भी एक तरह का हेड फेक था।
बिल्कुल, टीम वर्क और सहयोग की कला सिखाने का एक जबरदस्त हेड फेक।
समझ गई। वे सहयोग और फीडबैक के बारे में भी कुछ प्रैक्टिकल बातें बताते हैं?
हाँ, वे बताते हैं कि अच्छी टीम कैसे काम करती है। एक दूसरे को ठीक से जानना, कॉमन ग्राउंड तलाशना, सबको बोलने का मौका देना। और फीडबैक के बारे में उनका नजरिया था, सीधा और ईमानदार रहो, लेकिन हमेशा मदद करने के इरादे से। सिर्फ कमियां मत गिनाओ, सुधार का रास्ता भी सुझाओ। साथ ही तारीफ और प्रोत्साहन की ताकत को भी वे नजरअंदाज नहीं करते थे। कहते थे, एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों की क्षमता को पहचाने और उसे निखारने में मदद करे।
अच्छा, किताब के आखिर में वे जीवन जीने के तरीके पर कुछ और सीधी सलाह भी देते हैं, जैसे एटीट्यूड यानी रवैये के बारे में कुछ कहा उन्होंने?
हाँ, वे विनी द पू के किरदारों का उदाहरण देते हैं। पूछते हैं, क्या आप हमेशा उत्साही और आशावादी टाइगर हैं, या फिर उदास और निराशावादी ईयोर?
हाँ हाँ, टाइगर या ईयोर।
हाँ, वे कहते हैं कि ये हमारा चुनाव है, और टाइगर बनना ना सिर्फ हमारे लिए बेहतर है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी माहौल अच्छा बनाता है।
और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, एक प्रोफेसर के तौर पर वे इसमें तो माहिर होंगे।
बिल्कुल, वे प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए। फाइलिंग सिस्टम बनाओ, फोन कॉल्स को कुशलता से निपटाओ, और सबसे अहम जरूरी मतलब इम्पोर्टेंट और अत्यावश्यक मतलब अर्जेंट कामों के बीच फर्क समझो।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो वास्तव में मायने रखती हैं, ना कि सिर्फ उन पर जो तत्काल ध्यान मांग रही हैं।
और ईमानदारी और माफी मांगने के बारे में भी वे कुछ कहते हैं, आजकल ये भी बड़ा मुद्दा है।
हाँ, वे सच्ची माफी की अहमियत बताते हैं। उनके अनुसार एक अच्छी माफी के तीन हिस्से होते हैं, बताना कि आप इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे।
अच्छा, सिर्फ सॉरी कह देना काफी नहीं है?
बिल्कुल नहीं।
और कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना, ग्रैटिट्यूड।
वे इसे बहुत जरूरी मानते हैं। सलाह देते हैं कि लोगों को धन्यवाद कहें, हो सके तो हाथ से लिखा नोट भेजें।
आजकल कौन लिखता है हाथ से नोट?
हाँ, लेकिन वे कहते हैं कि ईमानदारी से आभार जताना रिश्तों को मजबूत करता है और हमें विनम्र बनाए रखता है। ये एक छोटी सी आदत है जिसका बड़ा असर होता है।
एक और दिलचस्प बात आपने बताई थी, सच्चाई और गंभीरता से जीना, मतलब लिविंग विद अर्नेस्टनेस। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि आजकल जो एक चलन है ना, हर चीज को हल्के में लेने का, हर चीज पर व्यंग्य करने का, जिसे वो आयरोनिक डिटैचमेंट कहते हैं।
हाँ, वो कूल बनने वाला एटीट्यूड।
हाँ बिल्कुल, उससे छोड़कर पूरी ईमानदारी और गंभीरता से जीना। अगर कोई चीज आपके लिए मायने रखती है तो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो, इस डर के बिना कि आप कूल नहीं लगेंगे। प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है।
ये सारी बातें वाकई बहुत प्रेरणादायक है। तो अगर हमें इस किताब के मुख्य संदेशों को यानी की टेकअवेज को समेटना हो तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे अहम संदेश है बचपन के सपनों की ताकत। वे सिर्फ कल्पनाएं नहीं हैं, वो हमारे असली जुनून और संभावनाओं की दिशा सूचक हैं। उनका पीछा करना हमें सिखाता है चाहे हम मंजिल तक पहुंचे या नहीं।
दूसरा, वो ईंट की दीवारों वाला नजरिया कि बाधाएं असल में हमारी प्रतिबद्धता का इम्तिहान है।
सही,
वे हमें रुकने के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए है कि हम कुछ पाने के लिए कितने तैयार हैं।
भारत में भी कई बार लगता है ना कि सिस्टम या हालात रुकावट डाल रहे हैं, पर ये सोच हमें शायद ज्यादा क्रिएटिव और दृढ़ बना सकती है। बिल्कुल। तीसरा, हेड फेक का सिद्धांत। जिंदगी के सबसे बड़े सबक अक्सर तब मिलते हैं जब हम कुछ और सीख रहे होते हैं।
हाँ,
ये हमें प्रक्रिया पर ध्यान देने को कहता है, न कि सिर्फ नतीजे पर। हमारे यहाँ भी तो बड़े बुजुर्ग कहानियों या कामों के जरिए यही करते आए हैं ना।
सही कहा।
चौथा, इंसान चीजों से ज्यादा जरूरी है। रैंडी के लिए रिश्ते हमेशा पहले आते थे, परिवार, मेंटोर्स, छात्र। उनका पूरा जीवन इसी बात का उदाहरण है कि लोगों में निवेश करना, उनके जीवन पर सकारात्मक असर डालना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है।
बिल्कुल, ये हमारे समाज के मूल्यों से भी बहुत मेल खाता है।
और पांचवा, जिंदगी को इरादे, खुशी और कृतज्ञता के साथ जीना। अपना नजरिया चुनना मतलब टाइगर बनना, पूरी ईमानदारी से जीना और आभार व्यक्त करना। ये वो छोटे छोटे चुनाव हैं जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को गहराई से बदल सकते हैं। रोज की भागदौड़ में भी एक पल रुककर किसी को धन्यवाद कहना मायने रखता है।
किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो सच में याद रह जाती हैं। कुछ खास बातें जो आपको लगता है बार बार सामने आती हैं?
हाँ, कुछ विचार तो जैसे मंत्र बन गए हैं। जैसे वो ईंट की दीवारों वाली बात। ईंट की दीवारें एक कारण से होती हैं, वे हमें ये दिखाने का मौका देने के लिए हैं कि हम कोई चीज कितनी बुरी तरह चाहते हैं।
हाँ, ये तो बहुत शक्तिशाली है, बाधाओं को अवसर की तरह देखना।
और वो अनुभव वाली बात भी। अनुभव वह है जो आपको तब मिलता है जब आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते थे, और अनुभव अक्सर सबसे मूल्यवान चीज होती है जो आप पेश कर सकते हैं।
ये असफलता को एक शिक्षक की तरह दिखाता है।
बिल्कुल। और हेड फेक पर उनका सार, बात यह नहीं है कि अपने सपनों को कैसे हासिल किया जाए, बात यह है कि अपना जीवन कैसे जिया जाए। यदि आप अपना जीवन सही तरीके से जीते हैं तो कर्म अपना ख्याल रखेगा, सपने आपके पास आएंगे।
मतलब चरित्र और जीने का सही तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण है सपनों से भी।
हाँ, और ये भी बहुत दमदार है, हम उन पत्तों को नहीं बदल सकते जो हमें बांटे गए हैं, बस हम उन्हें कैसे खेलते हैं ये बदल सकते हैं।
ये हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति पर जोर देता है, हालात चाहे जैसे हो।
बिल्कुल।
और अंत में कृतज्ञता पर। कृतज्ञता दिखाना सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो इंसान एक दूसरे के लिए कर सकते हैं।
एक छोटा सा भाव पर असर बहुत बड़ा। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? कुछ व्यावहारिक तरीके, कुछ टिप्स?
जरूर। जैसे काम की जगह पर, ऑफिस में, अगर कोई प्रोजेक्ट अटक जाए, वो ईंट की दीवार आ जाए, तो तो निराश होने के बजाय सोचे क्या कोई और रास्ता है, कोई साइड डोर।
हाँ, क्रिएटिव बने।
हाँ
हाँ, टीम बनाते समय अलग अलग तरह के लोगों को शामिल करें, फीडबैक को सीखने का जरिया समझें, चाहे वो देना हो या लेना। और हाँ, अपना समय वाकई जरूरी चीजों पर लगाएं, न कि सिर्फ अर्जेंट कामों पर।
और व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में
अपना रवैया चुनने की कोशिश करें, ज्यादातर समय वो टाइगर बनने का प्रयास करें। जब कुछ गलत हो तो उसे सिर्फ असफलता ना माने बल्कि अनुभव हासिल करना समझें और उससे सीखें।
अच्छा।
और नियमित रूप से आभार जताएं, फोन पर, मैसेज में या मिलकर। छोटी छोटी चीजें फर्क डालती हैं।
पेरेंटिंग में भी इसके कई सबक लागू हो सकते हैं, मुझे लगता है।
बिल्कुल, बच्चों को प्रयोग करने और अपनी रचनात्मकता दिखाने की आजादी दें, रेंडी के पेंट किए हुए कमरे की तरह, भले ही थोड़ी गड़बड़ हो जाए।
हाँ, गंदगी फैले तो फैले।
हाँ। उन्हें हेड फेक के जरिए सिखाएं, खेल या कहानियों के माध्यम से जीवन के मूल्य, और सबसे जरूरी, अपनी कहानियों और मूल्यों की विरासत उनके लिए छोड़ें।
और रिश्तों में
जब गलती हो तो ईमानदारी से सही तरीके से माफी मांगे। वो तीन भाग वाली माफी याद है ना?
हाँ हाँ, गलती मानना, खेद जताना और बताना कि ठीक कैसे करेंगे।
बिल्कुल, बनावटीपन या व्यंग्य के बजाय सच्चे और गंभीर बनें, दूसरों की सफलता में साथ दें और उन्हें प्रोत्साहित करें। ये सिद्धांत हर रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या रही? क्या चीज आपको सबसे ज्यादा छू गई?
मेरे लिए सबसे गहरी सीख ये है कि जीवन कितना लंबा है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो कितना सार्थक और गहरा हो सकता है ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। रैंडी पॉश ने अपनी भयानक परिस्थिति को एक सकारात्मक, प्रेरणा देने वाले संदेश में बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे मुश्किल हालात को भी उद्देश्य और मायने दिए जा सकते हैं।
हाँ, ये सच है। और मुझे वो हेड फेक का विचार बहुत दिलचस्प लगा, ये कि हम अक्सर जीवन के सबसे अहम सबक अनजाने में सीख रहे होते हैं, जब हमारा ध्यान कहीं और होता है। ये याद दिलाता है कि सफर, मतलब प्रक्रिया, अक्सर मंजिल से ज्यादा सिखाती है। हर अनुभव में सीखने का एक मौका छिपा होता है, अगर हम उसे देखने को तैयार हों तो।
और अंत में, ये किताब एक शक्तिशाली याद दहानी है कि जीवन का असली मतलब शायद हमारे रिश्तों में है, हमारे प्रयासों की ईमानदारी में है और दूसरों पर छोड़े गए हमारे सकारात्मक प्रभाव में है। ये सिर्फ सफलता पाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अच्छा, सार्थक जीवन जीने के बारे में है।
और शायद हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है, हमारी जिंदगी में कौन सी ईंट की दीवारें हैं जिन्हें हम बाधा समझ रहे हैं, जबकि वे शायद हमें ये दिखाने का मौका दे रही हैं कि हम सच में क्या चाहते हैं और उसके लिए क्या करने को तैयार हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।